सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी उपसंहार के रूप में जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है इस पर विचार करेंगे। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो हूं ज्यों ले जाती। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए? इतना ही भाव कि मैं रहूं आप में आप लीन। भगवान आप अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं इसलिए हम आपको भगवान मानते हैं और आपसे हम यही कामना भी करते हैं, यही हम भावना बाते हैं कि हम भी अपने उसी आत्म स्वरूप में लीन रहें। सो करो ज्यों हों निजाधी। आप हमारे जीवन के लिए हम पर क्या कृपा कर सकते हैं? हम आपसे क्या आकांक्षा रखते हैं? इतनी ही है कि जिसमें हम अपने उस स्वाधीन आत्मस्वरूप का अनुभव कर सके। भगवान से मांगने योग्य अगर कोई चीज है तो वो स्वाधीनता ही है। हम लोग अपनी कषायों के, अपनी कामनाओं और इच्छाओं के पराधीन होकर के जीवन जीते हैं। एक गृहस्थ जो है सुबह से शाम तक अपनी आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, यही उसकी पराधीनता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय इस पराधीनता से भी मुक्त हों। और इस पराधीनता का कारण क्या है? मेरे अपने कर्म, तो मैं इन कर्मों से भी मुक्त हों और आपके जैसा ही स्वाधीन बनूं, ये भावना भक्ति के समय बहुत प्रबल होनी चाहिए। और दूसरी कामनाएं और इच्छाएं तो अपने भीतर रहती हैं, सो भैया रहो, लेकिन मुख्य जो भावना है हमारे भीतर जो प्रबल रूप से होनी चाहिए वो यही कि जितनी देर आपकी भक्ति करूं कम से कम उतनी देर तो अपने उस स्वरूप के निकट रहूं और आपके जैसे स्वाधीन बनने की भावना रखूं। स्वाधीनता का सुख किसी से छुपा थोड़ी है, सब जानते हैं। और पराधीनता की तकलीफ भी सबने उठाई है, सबको अनुभव है। कुछ ऐसा नहीं है कि स्वाधीनता और पराधीनता के बारे में कोई न समझता हो। प्रभाकर जी ने अपने संस्मरण में लिखा कि वे एक बार जंगल में बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए गए, पेड़ के नीचे सामान रखा और सब अपना मनोरंजन करने लगे। दोपहर में देखा कि सामने वाले पेड़ पर कुछ बंदर भी बैठे हैं अब उनने भी जो भोजन सामग्री मिली सो वो खा पी करके और प्रसन्न थे। तो जैसे इनके बच्चे खेल रहे थे ऐसे ही बंदर भी खेल रहे थे। वहां पर कोई किसी का दबाव नहीं है, सब स्वतंत्र हैं और आसानी से सुख का अनुभव करते। तो कोई किसी के कानों में बैठ रहा था, कोई किसी की पूंछ पकड़ रहा था, कोई किसी के पेट में गुदगुदी लगा रहा था। बंदरों में भी ऐसा चल रहा। तो बड़े देख करके प्रसन्न हुए कि देखो इन जीवों में भी जो है और कितना परस्पर वात्सल्य है, प्रेम है और कितनी स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में अपना जीवन जी रहे हैं। अब एक दृश्य तो ये था, दूसरा दृश्य और देखने में आया। रास्ते के किनारे खड़े थे, वहां से गाड़ियां भर करके निकली, किसी सर्कस में जो बंदरों को सिखा करके खेल दिखाया जाता है उसकी गाड़ियां थी। एक गाड़ी में देखते क्या है कि बहुत सारे बंदर भरे हुए हैं सींख चौक के पीछे। अब वे क्या कर रहे हैं, ना वे किसी का कान उमेट रहे हैं, ना किसी की पूंछ खींच रहे हैं, ना किसी के लिए हंसाने के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं। वे तो एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं, एक दूसरे पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे को मुश्किल में डालने, परेशानी में डालने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये दूसरा दृश्य था। उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में कि मैंने अपने सामने दोनों ही दृश्य देख लिए। वहां जंगल में स्वाधीनता पूर्वक अपना जीवन जीने वाले बंदरों में जितना दया भाव, जितना प्रेम और वात्सल्य है, वो ये जो सर्कस में बंद करके और इनको अल्प थोड़ा सा भोजन दे दिया जाता है, भूख प्यास से परेशान हैं और पराधीन हैं, तो उनके भीतर आक्रोश है, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार का, घृणा का भाव। तो भाई स्वाधीनता क्या करती है? स्वाधीनता हमारे अपने गुणों का विकास करती है और पराधीनता में हमारी जितनी विकृतियां हैं वे उद्घाटित हो जाती। हम चाह करके भी अपने उस स्वरूप की, अपनी उस गुणवत्ता की अनुभूति नहीं कर पाते। तो अपन देखते तो हैं जो जितना कषाय के अधीन है, जो जितना अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अधीन है, वो कहाँ अपने उस गुणों का विकास कर पाता है, कहाँ अपने उस आत्म सुख का अनुभव कर पाता है। तो अपने को जब भगवान की भक्ति करते हैं तो यही भावना मन में आनी चाहिए कि आपने जैसा स्वाधीन, निजाधीन जिसको कहते, स्वाधीन सुख प्राप्त किया है तो मैं भी उसी सुख को प्राप्त करूं। और वो सुख मुझे कैसे प्राप्त हो गया? जैसे आपने कर्मों को काटने के लिए तपस्या करी, रत्नत्र धारण किया, तो वैसा ही यदि मैं भी रत्नत्र धारण करके तपस्या करूं तो ही मुझे प्राप्त हो। भगवान के भक्ति करते समय ऐसी ही भावना हमारे मन में आनी चाहिए और भक्ति करते समय विनय का भाव भी होना चाहिए। क्योंकि हम क्या भक्ति करेंगे भगवान की, हम क्या स्तुति करेंगे, कितना हमारा ज्ञान है। गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति आनंद चाहते गुणावक्तु असत्या स्वयं का कथम। भगवान किसी के गुणों को बड़ा चढ़ाते कहने का नाम स्तुति कहलाती है, और आप हो अनंत गुणों के धारी, आपके सबरे गुण कहने पे बड़ा चढ़ाते चाहते हम। ऐसा विनय का भाव कर रहे भगवान की स्तुति जितनी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन अंतरंग में क्या भाव है कि भगवान तो अनंत गुणों के धारी हैं, हम कितने से गुणों की व्याख्या कर पाएंगे, कितना गुणगान कर पाएंगे। ये विनय भाव हमारे अंदर उस समय जब हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो हमें कितनी बढ़िया भक्ति आउट है, देखो हम कितने पाठ याद हैं हमारे लाने हो, कितो अर्थ हम जानक सब बातों को। नहीं, ऐसा क्या, हम वहाँ पर भगवान की भक्ति करते समय तो अत्यंत अपने को अल्पज्ञ और अपने को जो है क्या कहें कि भगवान के चरणों में हम अपनी विनय व्यक्त करते हुए भक्ति करें। बादीराज महाराज भक्ति का उपसंहार करते हुए कहते कि भक्ति प्रभाव महेंद्र पूजित पद सत्कीर्तने न क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दर्शोपि संयम भ्रता के हंस मंदा वयम अस्मावन चलेन तु परस्वैयादर सन्नते स्वात्माधीन सुखैसी नाम सकलुन कल्याण कल्पद्र। हे भगवान, सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने वाले मुनियों के भी नायक गणधर महाराज भी, जिनके 63 रिद्धियां होती, एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़कर समस्त रिद्धियों को धारण करने वाले तत्ववेत्ता देवी न क्षमा, आपकी स्तुति करने में वे भी सक्षम नहीं हुए। के हंत मंदा वयम, अत्यंत खेद है हम बिचारे कहां उस आपकी भक्ति कर सके। जैसे अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, यहां बैठे हुए हैं बहुत श्रुतवान लोग, उनके बीच में जब मैं भगवान आपकी स्तुति करूंगा तो हंसी का पात्र होऊंगा, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं। लेकिन क्या करूं, आपकी भक्ति मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे कि आम्र फल लगने पर कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है, उससे प्रेरित होकर के, ऐसे ही आपके भक्ति भाव से प्रेरित होकर मैं अपना को ज्ञान बताने के लिए थोड़ू आपकी भक्ति कर रहा हूं। मैं तो अपनी भक्ति को कैसे व्यक्त करूं, इसलिए भक्ति को व्यक्त करने के लिए मैंने स्तुति का आलम बन लिया है। तो याद रन के स्तव छदे न, भक्ति करना तो बहाना है, मैं तो सिर्फ अपना सम्मान आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो अपने हृदय की भावना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मैं क्या स्तुति करूंगा, मैं क्या भक्ति कर सकूंगा, भक्ति तो बड़े बड़े लोगों ने आपकी करी है। मैं तो सिर्फ आपके प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहा हूं, आपके प्रति अपना अनुराग व्यक्त कर रहा हूं। और वादीराज महाराज की अपनी विशेषता है कि इतनी विनय के बाद भी उनका आत्मविश्वास और स्वाभिमान कहीं जाता नहीं, ये ध्यान रखना। लगता अपन को ऐसा है कि कौ के चरणों में झुक गए हैं तो हम अकड़े रहो, ये भैया सब रह जात अपनों, ये तो अकड़े अकड़े जो अन रहे थे उनको चलो जात सब, झुकने वाले का कुछ जाता नहीं। लगता जरूर है कि झुक गए जी बिल्कुल ही, हाथ जोड़ लें इनने तो अब करेगा इनको, कमजोर हैं ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन झुकने वाला कमजोर नहीं है। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर मैंने पर्वत से कहा कि मैं तो तुमसे भी ऊंचा हो गया। पर्वत ने कहा कि मैं तो किसी के सिर पर पैर रख के ऊंचा नहीं हुआ, मैं तो किसी के सिर पर पैर रख के ऊंचा नहीं हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरा माथा पर्वत के चरणों में झुक गया। मेरे झुके माथे को देखकर पर्वत ने कहा कि ये तो मेरे शिखर से भी ऊंचा हो गया, क्योंकि मुझे तो झुकना आता ही नहीं। झुकना आसान नहीं है, भगवान के चरणों में झुक करके भी हमारा आत्मविश्वास और स्वाभिमान बना रहता है, बल्कि और अधिक बढ़ जाता है आत्मविश्वास कि अब तो मैं जिनके चरणों में हूं उनके जैसा ही मैं बन जाऊंगा। स्वात्माधीन सुखैसी नाम सखलुना कल्याण कल्पद द्रुमा, हम भक्ति करने वालों के लिए ये जो आपके प्रति हम आदर व्यक्त कर रहे हैं, वो आदर या वो स्तुति भी स्वात्माधीन सुखैसी नाम सबके लिए नहीं, संसार के सुख चाहने वालों के लिए नहीं, स्वात्माधीन सुखैसी नाम जिनको आत्माधीन सुख की आकांक्षा है, ऐसे सब जीवों के लिए यह आपकी स्तुति या भक्ति या आपके प्रति जो आदर व्यक्त किया जा रहा है वो कल्याण कल्पद द्रुमा, वो तो कल्याणकाली कल्प वृक्ष के समान है। यह स्तुति, स्तुति के लिए कल्प वृक्ष कह रहे हैं, यानी मन चाहा फल देने वाली। और भैया संसार में मन चाही चीज कौन सी है, शाश्वत सुख है मन चाही चीज। वैसे सबकी अपनी अपनी अलग मनचाही चीज है, लेकिन जिसको आत्माधीन सुख चाहिए है उसकी मनचाही चीज कौन सी है, आत्माधीन सुखी उसकी मनचाही चीज है उसको देने वाले। तो स्तुति हमें और चीजें देवे या न देवे, लेकिन स्तुति हमें जो आत्माधीन सुख है वो अवश्य देती है, हमारे स्वाभिमान को जागृत करती है। अगर हमारे अंदर ये स्वाभिमान जागृत हो जावे कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा भी है, तो उसको प्राप्त करने की ललक अपने आप जागृत हो जाएगी। भक्ति यही कार्य करती है। अपन लोग भक्ति से पता नहीं और कौन कौन से काम बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो भक्ति से यही बनाना चाहिए अपना कि अभी तक पराधीन होकर के अपना जीवन जिया है, ये पराधीनता छूटे और हम जो है अपने उस स्वाधीन सुख को प्राप्त कर सकें। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बस आज इतनी ही बात, थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे, मेरे अपने शरीर की स्थिति के अनुरूप करना पड़ता है, तो छोटा सा उदाहरण आपको सुनाता हूँ। एक भिखारी प्लेटफॉर्म पर और कटोरे में किसी ने पेंसिल दे दी होंगी, तो पेंसिल रखे पैसे भी रखे और बैठा हुआ था, लोगों से मांग रहा था कुछ मिल जाए। अपन भी जिंदगी भर ऐसे ही मांगते रहते हैं, हाँ सबसे अपन मांगते रहते। अपन को जब तक ये ख्याल नहीं है कि हम भी कैसे बिना हम भी हर चीज के मालिक हो सकते हैं, जब तक ये एहसास न हो तो भिखारी बने रहते, मांगते रहते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना मांग नहीं तो है और क्या भैया, हाथ नहीं फैलाया बस और बाकी क्या। विचार करें अगर अपने अंतरंग में तो किसी से कहने नहीं जाना, ना किसी से भिखारी कहना, भैया सबई है मनो कोई से नहीं कह, न कहना भी नहीं चाहिए, शोभा भी नहीं देगा, पर अपने अंदर पहचानना चाहिए कि हाँ सचमुच में यही काम तो कर रहा। ऐसा स्वाभिमान जागृत हो जाए। वो भिखारी जो है पैसे मांगता था, एक नवयुवक ऑफिसर बन गया था, वो निकला वहां से और उसने एक रुपए का सिक्का उसके कटोरी में डाला, लेकिन अचानक ही पलट करके फिर आया और उसने उसमें से एक पेंसिल उठाई और उससे कहा कि मैं भी बिजनेसमैन हूं, तुम भी बिजनेसमैन हो, ये एक रुपए के बदले में मैंने एक पेंसिल इसमें से उठा ली। देखिएगा आप कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। करी एक रुपया देने तो सु दे देती, वो की बेचारे की पेंसिल और उठा लीजिए, तो तुमने इन्वेस्टमेंट किया, डोनेशन थोड़ी किया। लेकिन वो उतनी सी बात उस भिखारी को लग गई, उसका स्वाभिमान जागृत हो गया कि इतना बड़ा ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूं, तुम भी बिजनेसमैन हो, हिसाब बराबर हो गया, एक रुपये मैंने तुम्हें दिया, एक पेंसिल ले ली। छह महीने के अंदर, जहां मैंने पढ़ा था ये, वहां तो लिखा था कि सच्ची घटना है, छह महीने के भीतर उसी प्लेटफॉर्म पर और उसी ऑफिसर से प्रणाम करते हुए एक व्यक्ति को देखा गया। और इतना ही नहीं, वो जो नौजवान ऑफिसर था, जब इसने प्रणाम किया तो थोड़ा चकित हुआ कि भाई कोई पहचान ही नहीं है और फिर भी प्लेटफॉर्म पर प्रणाम कर रहे। तो उसने कहा कि आपने नहीं पहचाना, मैं वही भिखारी हूं जिसके कटोरे में एक रुपए का सिक्का फेंकने के बाद लौट करके आपने एक पेंसिल उठाकर कहा था कि तुम भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, हिसाब बराबर हो गया। मेरे अंदर उसी क्षण से ये बात जागृत हो गई कि कहां तक भीख मांग के अपना जीवन यापन करूंगा, मैं भी कुछ कर्म करूंगा और ऐसा कर्म करूंगा जिससे कि मुझे ये भीख नहीं मांगनी पड़े, दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़े, पराधीनता का अनुभव नहीं करना पड़े। ये स्वाभिमान उसके भीतर जागृत हो गया और तब से उसने छह महीने के अंदर अपनी मेहनत से और इतना बड़ा काम करके और पद प्राप्त कर लिया कि आज उस ऑफिसर के बराबर हाथ मिलाने लायक हो गए। अपन मिला सकते हाथ भगवान से, क्या भैया हम मिला तो सकते, अपन से मिला सकते भगवान हैं, अपने भीतर भी वही सामर्थ्य है। अगर अपने भीतर ऐसा स्वाभिमान जागृत हो जाए कि कब तक इन विषय कषायों का ही पोषण करता रहूंगा, इसी शरीर की सेवा करता रहूंगा, इन सब चीजों में उलझा रहूंगा, भाई मैं भी अपने उस स्वाधीन या आत्माधीन सुख को प्राप्त करने की सामर्थ्य वाला हूं, मुझे भी वही प्राप्त करनी है, ऐसी ललक अपने भीतर उत्पन्न हो तो अपनी भक्ति सार्थक होगी। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग शाम रच पक्ष कर गाहिनी निद्रा में सोता
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो,
वो अर्धी साता सन्नाता चरते
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तप पर तरुतल वर्षा की झड़ियां में
तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर जाना धरती वाणी मानो धरती हो फूल धनिया,
अब बंधन कड़ कर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम पावानी क्या कोई हो जग को देवी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शमशम की अभिश्वर
निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तमना स्वेको ज्ञान के प्रकाश वेको
प्रभु जानवे को बंधु विधि भानवे को सतर पिछानवे को परम प्रणामी है,
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काबू न सताय वेखो भव्य और यानी है,
जहाँ तहाँ पार वेखो पार के उतार वेखो सुख में तार वेखो यही जीवानी है,
वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो
घर घर में।